Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Radha, Shama Sundara Radha, Shama Sundara Radhe. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Acharya Ashtavotra Sati. His Divine Grace Abhay Charanaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Acharya Ashtavotra Sati. His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai. Shri Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Kaise rakhne ki ek takiya hai mere mein. Ek takiya. You can just keep like this. हरे कृष्णा। अढ़ाई घंटे का लेक्चर भी हो गया तो आप थके हुए होंगे ऐसे। फ्रेश हैं? वैसे 12 बजे शुरू करना था यार, आधा घंटा लेट हो गया। तो वैसे भी आज एकादशी है, सबको भूख भी लगी होगी प्रसाद के लिए, तो 12 बजे तक फास्टिंग था ना आज। तो ठीक है, देखते हैं, शायद आज जो हमने सोचा था उतना नहीं कर पाए क्योंकि समय कम है अब, लेकिन जितना होगा उतना करेंगे, प्रयास करेंगे सरल से सरल भाषा में कहने के लिए, ताकि किसी को समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो 5 दिन हम ये चर्चा करने वाले हैं। श्रील रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, हमारी सारी परंपरा, हमारा संप्रदाय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं पर आधारित है। वैष्णव कई हैं, कई संप्रदाय हैं, और हम सब मध्व संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन मध्व संप्रदाय में भी उडुपी के जो मध्व संप्रदाय के भक्त हैं उनकी विचारधारा और हमारे विचारधारा में काफी अंतर है। तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की शिक्षाओं को स्पष्ट रूप से अपने शिष्यों को सिखलाया। चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ लिखे नहीं, उन्होंने केवल 8 श्लोकों की रचना की शिक्षाष्टक, इसके अलावा और किसी भी ग्रंथ की या कविता की रचना उन्होंने नहीं की। लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को सिखलाया और फिर उन भक्तों ने जाकर कई ग्रंथ लिखे। ये भगवान का स्वरूप है, उनका स्वभाव है कि वो अपने भक्तों को, भक्तों का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं हर चीज के लिए। हालांकि ये ज्ञान तो भगवान से ही आ रहा है, परंतु वो ऐसे भक्तों को सामने आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सारा श्रेय जो है वो भक्तों को मिल जाए। तो जो भी ज्ञान है आज हमारे पास, वो चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने भक्तों को दिया था वही ज्ञान है, और उनके माध्यम से आज ये ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में से कई भक्त प्रमुख थे, उनमें से षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी का विशेष महत्व है, विशेष करके श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी इनमें से प्रमुख माने जाते हैं, 6 गोस्वामियों में से। इसलिए गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के भक्तों को रूपानुग कहा जाता है, रूप अनुग, रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में चलने वाले, जो रूप गोस्वामी के शिक्षाओं के अनुसार चल रहे हैं, तो हम सब रूपानुग हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बहुत लंबा उपदेश दिया था वाराणसी में 2 महीने तक। उसी तरह उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को भी 10 दिन लगातार उपदेश किया था प्रयाग में। तो इन 5 दिनों में हम इन शिक्षाओं के बारे में सुनने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिक्षाएं जो हैं आध्यात्मिक ज्ञान के सबसे प्राथमिक स्तर से लेकर सबसे ऊंचे शिखर तक हमें ले जाते हैं। सरल से सरल ज्ञान से चैतन्य महाप्रभु आरंभ करेंगे उपदेश देने के लिए, और धीरे धीरे उठते 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 ऐसे चट्टान पर पहुंच जाएंगे कि हम सोचेंगे अरे ये तो बहुत ऊंचा है हमारे लिए, ये इतना ऊंचा स्तर है, हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे प्रेमा भक्ति का वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते हैं। तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या इतिहास है, उसके बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। आप सब तो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, और उनके आंदोलन को बढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया काटवा में, फिर जगन्नाथपुरी गए, कई महीने वहां बिताए। उनके मन में बाद में ये इच्छा हुई कि हमें वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन की ओर बढ़े, परंतु पूरी यात्रा नहीं की। उत्तर दिशा में जाते जाते बंगाल में रामकेली नाम के गांव में आए, वहां पर पहली बार उनकी मुलाकात 2 सज्जनों से हुई जो आगे चल के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के नाम से जाने जाने वाले थे। लेकिन उस समय उनका नाम था साकर मल्लिक और दबीर खास, और ये नवाब हुसैन शाह के राज्य में मंत्री थे। वैसे इनके पूर्वज जो हैं वो कर्नाटक से थे, कर्नाटक के ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन कई पीढ़ियों से अब बंगाल में आके बसे थे, और क्योंकि उन्होंने नवाब हुसैन शाह की सेवा स्वीकार की इसलिए उनका नाम भी बदल गया, और प्राय उनको म्लेच्छ समाज में माना जाता था। मतलब जो ब्राह्मण लोग थे इत्यादि, वो सोचते थे कि ये लोग अभी यवन हो गए, म्लेच्छ हो गए हैं, क्योंकि म्लेच्छों की सेवा में लगे हुए हैं। हालांकि सबसे ऊंचे विद्वान थे, बड़े विद्वान थे दोनों। तो आगे भी चल के चैतन्य महाप्रभु कन्हैया नटशाला तक पहुंचे, फिर वापस गए। तो इस बार जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के बहाने पर जगन्नाथपुरी से निकले थे, तो उनके मन में यही एक इच्छा थी कि हमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का उद्धार करना है। और फिर राम केली से वो लौट कर आए वापस जगन्नाथपुरी। तो राम केली में जब पहली बार सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिले, तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान लिया कि आज से हमें सारे भौतिक कार्यों को खत्म करना है, आज से हमारा भौतिक जीवन समाप्त। और दोनों भाइयों ने फिर कई ब्राह्मणों को बुलाया, पुरुषचरण विधि इत्यादि की, ताकि भगवान श्री कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज आए हैं, उनके चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए जो भी विघ्न आए हैं उनको नाश करने के लिए। बहुत धन इन ब्राह्मणों को उन्होंने दिया कि ऐसे विधि विधान कीजिए, विधियां कीजिए, यहां अनुष्ठान कीजिए, जिससे कि हम चैतन्य महाप्रभु के शरण को ग्रहण कर पाए। फिर रूप गोस्वामी ने अपने सारे धन का बंटवारा किया। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि गृहस्थ को कैसे अपना धन का बंटवारा करना चाहिए, ये एक आदर्श श्री रूप गोस्वामी ने दिया। उनके पास जितना भी धन था 50% उन्होंने ब्राह्मणों और वैष्णवों को दान दे दिया, 25% जो है उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए रखा, 25% बाकी जो है वो उन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए रखा, किसी आपातकालीन स्थिति के लिए वगैरह। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को अपने धन को बांटना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंतिम क्षण तक व्यक्ति अपने धन को अपने पास ही रखे और किसी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग ना करे। और फिर उन्होंने 10,000 सोने के सिक्के जो हैं एक किराने दुकानदार के पास रखा और कहा कि आपके पास ही रखिए। और फिर उन्होंने अपने दो दूतों को भेजा जगन्नाथपुरी कि ये खबर ले आओ कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर कब जा रहे हैं। तो ये दो दूत चले गए जगन्नाथपुरी। इस दौरान हुआ ये कि सनातन गोस्वामी वो बड़े चिंता में थे कि हम ये नवाब हुसैन शाह की कोई सेवा नहीं करनी है, बहुत हो गया, अब हमें चैतन्य महाप्रभु के शरण ग्रहण करना है। और बीमारी के बहाने वो अपने घर में बैठे, अपने सेवा के लिए आए नहीं राजा के दरबार में। एक दिन बीत गया, कई दिन बीत गए, और फिर हर रोज वो चिट्ठी भेजते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ सकता, सिक लीव का एप्लीकेशन उन्होंने डाल दिया। तो उस समय नवाब हुसैन शाह को थोड़ा संशय हुआ कि ये वास्तव में बीमार हैं कि कोई ढोंग कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने वैद्य को भेजा कि जाके देखो कि वास्तव में ये बीमार हैं कि नहीं। वैद्य आए अचानक, उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बल्कि ये यहाँ बैठकर ब्राह्मणों के संग भागवत सुन रहे हैं सुबह से रात तक। तो उन्होंने खुद जाकर जब खबर दी तो नवाब हुसैन शाह खुद वहां पर आए और देखा कि भागवत कथा चल रही है सुबह से रात तक। बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये सब क्या चल रहा है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि क्या करूं, मुझे भागवत में रुचि है, आपकी सेवा नहीं करनी है। तो नवाब हुसैन शाह को गुस्सा आया, सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया। और उस समय जब रूप गोस्वामी को पता चला तो उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस समय तक उनके दो दूत पुरी से वापस आ गए थे और पुरी से खबर लाए कि महाप्रभु वृंदावन के लिए रवाना हो चुके हैं। तो रूप गोस्वामी ने अपने और एक भाई थे, छोटे भाई, जिनका नाम था अनुपम मल्लिक, बाद में जाकर महाप्रभु ने उनको नाम श्री वल्लभ रखा। तो उन दोनों भाइयों दोनों भाई जो है वृंदावन की ओर निकल पड़े। जाने के पहले रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को एक चिट्ठी लिखी कि हम दोनों भाई वृंदावन की ओर निकल रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, हमें महाप्रभु का संग ग्रहण करना है, और आप भी शीघ्र अति शीघ्र यहाँ जेल से निकल पड़ो और आके हमारा संग हमारे साथ में आना वृंदावन में, और 10,000 सोने के सिक्के यहाँ एक दुकानदार के पास हमने रखे हैं, अगर चाहिए तो उनको लेकर निकल पड़ो यहाँ। तो इस प्रकार से वृंदावन की ओर निकल पड़े रूप गोस्वामी और अनुपम। रास्ते में प्रयाग में आके रुके, उस समय उनको खबर मिली कि चैतन्य महाप्रभु भी ठीक उसी समय प्रयाग में आ गए हैं। तो सब जगह कोलाहल मच गया था, हल्ला गुल्ला हो रहा था सब सड़कों में, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। सब रूप गोस्वामी देखने गए और देखा कि वहां पर महाप्रभु हैं और उनके पीछे पीछे हजारों हजारों भक्त चल रहे हैं। प्रयाग के लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने मात्र से, उनके कीर्तन सुनने मात्र से सब कृष्ण भक्त बन गए थे। महाप्रभु प्रयाग में स्थित बिंदु माधव भगवान के मंदिर की ओर जा रहे थे संकीर्तन करते करते, और दूर खड़े होकर इस सुंदर दृश्य को देख रहे थे ये दोनों भाई। वो क्या देख रहे हैं कि महाप्रभु ने अपने दोनों भुजाओं को उठाया है और सबसे प्रेरित सबको कह रहे हैं कि हरी हरी बोलो, और सब लोग हरी हरी बोल रहे हैं। तो हरी भगवान के नाम की ध्वनि जो है सब जगह गूंज रही थी, और जितने भी हजारों हजारों भक्त थे उनके साथ में, कोई हंस रहे थे, कोई नृत्य कर रहे थे, कोई कीर्तन कर रहे थे, कोई रो रहे थे, कोई लौट रहे थे जब जमीन पर और कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे। प्राय सभी लोग उन्मत्त हो गए हों कृष्ण प्रेम में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रयाग में गंगा और यमुना इन दोनों का संगम है। आज तक प्रयाग में कभी इन दोनों नदियों का बाढ़ नहीं हुआ था, फ्लड नहीं हुआ था, लेकिन आज एक बाढ़ हुआ, लेकिन जल का नहीं, कृष्ण प्रेम का। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से प्रेम संकीर्तन किया कि कृष्ण प्रेम का बाढ़ सारे प्रयाग में आ गया, जिसमें कि सारे प्रयाग के निवासी जो हैं वो बह गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भाव विभोर होकर बिंदु माधव भगवान का दर्शन किया और फिर उनकी मुलाकात एक दक्षिण द्रविड़ देश के ब्राह्मण से हुआ। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को अपने घर में बुलाया, निमंत्रित किया भोजन के लिए। महाप्रभु ने निमंत्रण स्वीकार किया। जब महाप्रभु वहां पर एकांत स्थान में बैठे थे तो दोनों भाई रूप गोस्वामी और अनुपम वहां पर आए और दूर से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया अपने दांतों में तृण रखते हुए। तृण रखना, घास अपने मुंह में रखने, दंडवत करना, ये क्यों करते हैं आप जानते हैं? नम्रता का एक नम्रता की प्रदर्शन है, प्रदर्शनी है ये। जैसे एक गधे की तरह गधा जो है वो मुंह में घास लेके घूमता है, तो हम भी गधे के समान हमें मूर्ख है, हम कुछ नहीं मालूम हमें। तो जब हम किसी बहुत ही माननीय व्यक्ति के सामने, पूजनीय व्यक्ति के सामने हम झुकते हैं तो कभी कभी घास में मुंह में जो है घास रख के करते हैं, ताकि हम बहुत नम्र, आपके सामने हम कुछ भी नहीं, हम तुच्छ हैं। और फिर सुंदर सुंदर श्लोकों से महाप्रभु की स्तुति करने लगे दोनों भाई। कभी उठते उठते फिर बैठ जाते, कभी गिर जाते, भाव विभोर होकर प्रेमावेश में आ गए थे दोनों भाई। और इस तरह दोनों भाइयों की मुलाकात पुनः चैतन्य महाप्रभु से हुई। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए इन दोनों को देखकर, दोनों को आलिंगन किया और फिर असीम कृपा बरसाई दोनों के ऊपर। दोनों के सर के ऊपर उन्होंने अपने चरण कमल रखे और फिर रूप गोस्वामी से कहने लगे कि अरे रूप, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम दोनों को यहां पर देखकर, और ये तुम्हारा अहोभाग्य है, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा तुम दोनों के ऊपर है कि तुम अभी इस भौतिक भोग के कुएं से मुक्त हो गए हो। तुम श्री कृष्ण के चरणों में आश्रित, आश्रय प्राप्त करने के लिए आ रहे हो, तो ये बहुत सौभाग्य है तुम्हारा। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक कहा, नमे भक्तश्चतुर्वेदी मद भक्तः स्वपच प्रियः तस्मै देयम् ततो ग्राह्यम् सच पूज्यो यथा ह्यहम्। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नमे अभक्तः चतुर्वेदी मद भक्तस् स्वपच प्रियः। अगर कोई चतुर्वेदी हो, वेदों में बहुत विद्वान हो, लेकिन मेरा भक्त नहीं है तो प्रिय नहीं है मेरे लिए। न मैं अभक्तः चतुर्वेदी, जिसको एक वेद का ज्ञान है उसको वेदी कहते हैं, जिसको दो वेदों का ज्ञान है उसको क्या कहते हैं, द्विवेदी, जिसको तीन वेदों का ज्ञान है त्रिवेदी, और जिसको चारों वेदों का ज्ञान है चतुर्वेदी। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि कोई अगर चतुर्वेदी भी क्यों ना हो, आजकल लोगों के टाइटल होते हैं चतुर्वेदी, सरनेम चतुर्वेदी, वेदों का ज्ञान नहीं है लेकिन नाम हो जाता है चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, वेदी। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि कोई अगर चतुर्वेदी भी हो लेकिन अभक्त है, तो फिर मैं उसे कोई विशेष नहीं मानता, मैं उसको मेरा वास्तव में भक्त नहीं मानता। लेकिन अगर कोई स्वपच है, स्वपच मतलब जो चांडाल है, जो कुत्ते का मांस खाने वाला आदमी है, स्व मतलब कुत्ता। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि कोई सज्जन उनके पास आए, उनकी धर्म पत्नी को लेकर, उनकी एक बच्ची थी साथ में, और तो इन्होंने पूछा, भक्त ने पूछा कि बच्ची का नाम क्या है, बहुत सुंदर बच्ची है। उन्होंने कहा कि इसका हमने ऐसे अलग सा नाम रखना चाहा, ये जो साधारण नाम है ना ऐसे नहीं रखना चाहा, तुमने कुछ ऐसे विचित्र नाम, ऐसे अद्भुत नाम रखना है। क्या नाम रखा? श्वा। तो श्वा ये क्या, श्वा क्या है? बस एक अलग सा नाम उनको चाहिए था। तब उन्होंने समझाया है, आप जानते नहीं श्वा मतलब क्या है, श्व और श्वा, श्व मतलब कुत्ता और श्वा मतलब कुत्ती, तो आपने अपने बच्चे का नाम श्वा रखा, आपको लगता है थोड़ा फैशनेबल है ये, फैशन तो अच्छा लगता है श्वा। तो देखिए आजकल लोग तरह तरह के ऐसे नाम रखते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति है कि भगवान के नाम रखने चाहिए बच्चों के लिए, लक्ष्मी देवी के, राधा रानी के नाम लड़कियों के लिए, और कृष्ण या विष्णु के नाम या भक्तों के नाम लड़कों के लिए। तो स्वपच, पच मतलब खाना। तो अगर कोई व्यक्ति स्वपच है, चांडाल है, कुत्ते का मांस खाने वाला, मतलब इतना इतने निम्न श्रेणी का व्यक्ति हो जो कि वर्णाश्रम पद्धति से भी बहिष्कृत किया गया हो, ऐसा व्यक्ति लेकिन अगर कृष्ण भक्त है तो मैं उसको सच्चा भक्त मानता हूं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर चतुर्वेदी होकर मेरा भक्त नहीं है तो मैं उसको कोई महत्व नहीं देता। तो तस्मै देयम् ततो ग्राह्यम्, ऐसे व्यक्ति को जो स्वपच होकर मेरा भक्त है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें पूरा सम्मान देना चाहिए, और अगर वो हमें कुछ देना चाहे तो उसको अवश्य स्वीकार करना चाहिए। सच पूज्यो यथा ही अहम्, बल्कि उसकी पूजा ऐसे करनी चाहिए कि जैसे मेरी पूजा की जाती है। ये श्री कृष्ण कहते हैं पुराण में ये श्लोक। तो महाप्रभु इस श्लोक को इस श्लोक की पुष्टि देकर कह रहे हैं कि देखो, आप ये नहीं समझो कि आप कोई साकर मलिक दबीर खास वगैरह, आप नवाब हुसैन शाह के सेवा में लगे थे, म्लेच्छ यवन माने गए थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जो कृष्ण भक्त है वो अपनी जाति से, अपने जन्म के कोई दोष से परे हो जाता है। और फिर रूप गोस्वामी ने वो महत्वपूर्ण श्लोक कहा, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः। ये प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते हैं ना, नमो महावदान्याय, मैं नमन करता हूं उस उन भगवान का जो कि महावदान्याय, वदान्याय मतलब जिनका हृदय बहुत उदार है, जो अति कृपालु है। कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए आए हैं। नामने गौरत्वशे नमः, तो मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि गौरत्वश, गौर मतलब सोने का रंग, पिघले हुए सोने का रंग, त्वचा, त्वचा मतलब त्वचा उनकी गौर रंग की है, सांवले रंग की नहीं। कृष्ण का जो, कृष्ण की त्वचा वैसे सांवले रंग का है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है लेकिन गौर वर्ण में आए हैं। तो ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूं, ये श्लोक है। तो इस प्रकार से वहां पे महाप्रभु की कृपा रूप गोस्वामी ने अनुपम में प्राप्त की। सारे दिन के लिए वहां पर रूप गोस्वामी महाप्रभु के संग में रहे। महाप्रभु ने त्रिवेणी संगम के पास ही एक निवास स्थान में रहना ठीक समझा, तो रूप गोस्वामी अनुपम मलिक ने भी उसी स्थान के पास और एक निवास स्थान चुन लिया रहने के लिए। और उसके बाद में वल्लभ भट्ट आए, वल्लभ भट्ट के साथ वार्तालाप हुआ। सुंदर तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, मध्य लीला के 19वें अध्याय में। तत्पश्चात एक और भक्त आए जिनका नाम था रघुपति उपाध्याय, उनका भी चैतन्य महाप्रभु के साथ एक सुंदर संवाद हुआ। और इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, अब मुझे मेरे प्रिय भक्त श्री रूप को उपदेश देना है। वहां प्रयाग शहर में तो बहुत हल्ला गुल्ला था, तो उन्होंने सोचा कि यहां से कोई एकांत स्थान में दूर जाना है जहां आराम से मैं उनको पूरी शिक्षा अच्छी तरह से दे पाऊं। तो एक जगह गए जिसका नाम है दशाश्वमेध घाट, दश अश्वमेध घाट। बहुत प्राचीन स्थान है ये, इसका बहुत महत्व है। यहाँ पर तरह तरह के यज्ञ हुआ करते थे। आप में से जो प्रयाग गए हैं आप अवश्य इस स्थान में गए होंगे, दशाश्वमेध घाट। तो आइए अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी का वर्णन सुनते हैं, बड़े सुंदर बंगाली भाषा में जो कि बहुत सरल है उन्होंने वर्णन किया है। तो यहां पर स्थान पर रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी और भक्ति की शक्ति का संचार उनके हृदय में कर दिया। क्या सिखाया रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने? कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत सब सिखाई ल प्रभु भागवत सिद्धांत। तो चार चीजें हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिखाई, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व और भागवत सिद्धांत। इनका प्रांत, प्रांत मतलब इनकी सीमा, रस तत्व प्रांत, इन चार विषयों की सीमा तक वो उनको शिक्षा उन्होंने दी इन 10 दिनों में। तो कौन से हैं बताइए? कृष्ण तत्व मतलब कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, कृष्ण तत्व। दूसरी बात भक्ति तत्व, भक्ति क्या चीज है। आजकल लोग इसको बहुत सस्ता लेते हैं ना, हाँ हाँ जी हम भी भक्त हैं, हाँ हम भी कृष्ण को जानते हैं। कृष्ण को जानना कोई साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े योगी मुनि ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो चुके हैं। आप ये लीलाएं जानते हैं, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, इंद्रदेव मोहित हो गए, कितने बड़े ऋषि मुनि मोहित हो गए। तो फिर यहां पृथ्वी लोक के जो तुच्छ जीव हैं, मनुष्य हैं, उनकी बात क्या है। तो इन तत्वों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर भक्ति के बारे में तो कई लोग कहते हैं कि हाँ हाँ आप जो करते हैं हम भी करते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति है क्या ये बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व। रस मतलब जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, ये तरह तरह के संबंध हो सकते हैं। तो हर एक संबंध के अनुसार अलग अलग रस हैं। ये रस क्या है इसका विश्लेषण जो है, इसका विवरण चैतन्य महाप्रभु ने दिया है रूप गोस्वामी को। और साथ साथ भागवत सिद्धांत, श्रीमद् भागवत का जो निष्कर्ष है, इसके जो मूल सिद्धांत हैं, इनका ज्ञान भी महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया। तो इन चार तत्वों के बारे में अब हम इन 5 दिनों में चर्चा करने वाले हैं। रामानंद पाश जातो सिद्धांत सुनीला रूपे कृपा करिता है सब संचारिला रामानंद पासे जत सिद्धांत सुनीला। रामानंद राय के पास जो चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी सिद्धांत सुने थे, रूपे कृपा कोरी तहा सब संचारिला, तो कृपा करके उन्होंने उन्हीं सिद्धांतों को रूप गोस्वामी के हृदय में संचार कर दिया। कहने का मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से, अपने अध्यापक से कुछ सुनता है, फिर आगे जाके किसी दूसरे को सिखाता है, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया, एक विद्यार्थी किनसे, रामानंद राय से। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा में निकले थे, वृंदावन जाने के पहले, और कई महीनों तक वो यात्रा में रहे। आंध्र प्रदेश में गोदावरी के तट पर उनकी मुलाकात रामानंद राय से हुई थी। रामानंद राय का नाम तो आप सबने सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु के निकट के भक्तों में से हैं, बहुत वरिष्ठ भक्त, बहुत पहुंचे हुए भक्त, शुद्ध भक्त। और जब वो पहुंचे गोदावरी के तट पर, रामानंद राय वहां के राज्यपाल थे, गवर्नर, महाराज प्रताप रुद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। महाराज प्रताप रुद्र उड़ीसा के राजा थे, लेकिन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तो पास पास में है, आप जानते हैं। तो जब ये स्नान करने आए हैं गोदावरी पर, तो वहां पर महाप्रभु बैठे हुए थे। उन्होंने महाप्रभु को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, दोनों ने आलिंगन किया, और चैतन्य महाप्रभु को समझ में आया ये बहुत महान भक्त हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे जगन्नाथपुरी में कहा था कि वहां जाइए, रस तत्व के बारे में आपको जानना है तो रामानंद राय उचित व्यक्ति है, सही व्यक्ति है, जो आपको सब कुछ सिखा पाएंगे। तो केवल आपका दर्शन करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन एक नम्र स्थान स्वीकार कर रहे हैं। और फिर उसके बाद रामानंद राय और महाप्रभु कई दिनों तक शाम को एकांत स्थान में मिलते और महाप्रभु कई प्रश्न करते। महाप्रभु रामानंद राय का संवाद बहुत प्रसिद्ध है। चैतन्य चरितामृत में बहुत लंबा भाग मध्य लीला में इस संवाद के ऊपर है। हरे कृष्ण भक्त को चाहिए कि वो इस संवाद को अच्छी तरह से पढ़े। हो सकता है कहीं अगली बार इस संवाद के ऊपर एक सेमिनार करें। बहुत ही जरूरी है सब भक्तों के लिए इस संवाद को जानना, खास करके मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और फिर कृष्ण तत्व, रस तत्व, सब कुछ इस संवाद में चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के मुख से कहलवाया। रामानंद राय कहने लगे, मैं तो एक कठपुतली हूं, आप जैसे मुझे नचाएंगे मैं नाचूंगा, जैसे आप मेरे जिह्वा को नचाएंगे मेरी जिह्वा बोलेगी, जैसे एक वीणा होता है, वीणा जो यंत्र है, वाद्य, तो जैसे बजाने वाला बजाएगा वैसे वीणा से आवाज निकलेगा, तो वैसे ही मैं भी एक वाद्य हूं, जैसे आप मेरे जिह्वा को बजाएंगे बुलवाएंगे वैसे मेरे मुख से वचन निकलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही बोल रहे हैं मेरे मुख से, और ये आप अद्भुत लीला कर रहे हैं कि आप ही बोल रहे हैं मेरे माध्यम से और खुद आप सुन रहे हैं। आप भी शिक्षक और आप भी विद्यार्थी। तो रामानंद राय से इन्होंने सब कुछ सीख लिया, और सीखने के बाद अब उन्हीं चीजों को यहां पर दोहरा रहे हैं, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। फिर आगे कृष्णदास को कविराज कहते हैं, श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला सर्व तत्व निरूपण प्रवीण कौरीला। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला, शक्ति का संचार महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में किया। कैसा, कैसी शक्ति, सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करीला, उनको सारे तत्व में बिल्कुल प्रवीण, निपुण कर दिया। सारे तत्वों का निरूपण मतलब उसको जानने के लिए जो शक्ति है उसमें प्रवीण बना दिया। यह हम देखते हैं कि दुनिया में सभी लोग भ्रमित हैं, सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं है समझना बहुत मुश्किल है। इसका विश्लेषण करने से आदमी बिल्कुल उसका दिमाग चकरा जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के हृदय में भगवान द्वारा शक्ति दी जाती है, बुद्धि दी जाती है, तब व्यक्ति समझ सकता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, शिवानंद सेन नाम के महाप्रभु के भक्त थे, गृहस्थ थे, बहुत महान भक्त थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था कवि कर्णपुर। कवि कर्णपुर भी बहुत महत्वपूर्ण भक्त हैं, शुद्ध भक्त। उन्होंने एक किताब लिखी है, चैतन्य चंद्रोदय, एक नाटक है। तो उसमें उन्होंने श्री रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के इस मिलाप का वर्णन किया हुआ है। और वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन प्रकट हुए थे, लेकिन समय से भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली जो हैं वो सब लुप्त हो गए थे। किसी को पता नहीं था कृष्ण लीला कहाँ पर किए थे। तो इन लीला स्थलों को पुनः प्रकट कराने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को यह विशेष शक्ति प्रदान की, अपने कृपामृत का पात्र बनाया, जिससे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य गोस्वामी इन लीला स्थलियों को पुनः प्रकट कर दें सारे जगत के हित के लिए। पहले से ही कवि कर्णपुर कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों से बहुत आकर्षित हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को त्याग दिया था और अपने भाई के साथ वो निकल पड़े और चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हुई। और जब वहां पर प्रयाग में आए तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कई दिन शिक्षा दी। रूप गोस्वामी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप थे। चैतन्य महाप्रभु की तरह ही दिखने में भी बहुत सुंदर थे और चैतन्य महाप्रभु के समान दिव्य गुण रूप गोस्वामी में भी थे, और इसलिए वो बड़ी योग्य व्यक्ति थे चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों को समझने के लिए और फिर इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जितने भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे अलग अलग स्थानों में, जैसे जगन्नाथपुरी में, बंगाल में, वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में हमेशा सुनना चाहते थे। जब भी कोई वृंदावन से लौट कर आता तो बड़े आतुरता से वो पूछते इन भक्तों को कि क्या आपने रूप गोस्वामी के बारे में सुना है, देखा है उनको, आप मिले थे उनको, और तरह तरह के प्रश्न करते हैं। और क्योंकि वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से बहुत प्रेम करते थे ये सारे भक्त, उनको उनका बड़ा सम्मान करते थे, जानते थे ये सब शुद्ध भक्त हैं, इसलिए बड़े आतुरता से प्रश्न पूछते थे। तो कैसे प्रश्न पूछते थे? पूछते थे कि कहा तहा कैसे रहो सूप सनातन, कैसे रहे कैसे वैराग्य कैसे भोजन। अच्छा, आप वृंदावन से आए हैं, ये बताइए कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं वो, कैसे रहे, किस तरह से रहते हैं, उनका वैराग्य कैसे है और उनका भोजन कैसे चल रहा है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं वो, और उनका समय कैसे बीतता है। कैसे अष्ट प्रहर करण श्री कृष्ण भजन, हमने सुना है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी 24 घंटा भजन करते हैं। सही है, कैसे करते हैं 24 घंटा भजन? अष्ट प्रहर, प्रहर मतलब 3 घंटा, अष्ट मतलब 8, तो अष्ट प्रहर मतलब 24 घंटे। तो हमने सुना है कि 24 घंटा भजन करते हैं, कैसे करते हैं, जरा सुनाइए हमको भी, हम भी जानना चाहते हैं। और इस समय ऐसे आने वाले भक्त ऐसे प्रशंसा करते रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की, कि सारे भक्त विस्मित हो जाते हैं। और वो क्या कहते, जो वृंदावन से लौट के आने वाले भक्त थे, वो कहते कि ये जो दो भाई हैं उनका कोई निवास स्थान ही नहीं है। आज एक पेड़ के नीचे रुके, अगले रात को किसी दूसरे पेड़ के नीचे जाके रुकेंगे। और अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, माधुकरी करते हैं। वृंदावन में ये प्रथा है, ये माधुकरी शब्द शायद आपने सुना होगा। आपको पता है ये माधुकरी शब्द कहाँ से आता है? माधुकरी मतलब क्या है? जब यहाँ के जो बाबा जी वगैरह हैं वो क्या करते हैं, खुद पकाते नहीं हैं कोई भोजन, जगह जगह ब्रजवासियों के घर में जाते हैं और जो भी वो दान देते हैं, एक रोटी, कोई अचार, कुछ सब्जी, कुछ जो भी मिले, चावल, चावल तो यहाँ ज़्यादा नहीं होता, रोटी होती ज़्यादा से, तो जो भी मिला वो एक घर, दो घर, चार घर, उनका नियम होता है, हम चार घर में जाएंगे, दो घर में जाएंगे, एक घर में जाएंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग नियम होते हैं, उतने घरों में से जितना भी मिलता है उतना स्वीकार करते हैं और उसे संतुष्ट रहते हैं, तो इसको माधुकरी कहते हैं। तो माधुकरी क्यों कहते हैं इसको, पता है किसी को? मधुमक्खी की तरह है। मधुमक्खी के, मधुमक्खी क्या करती है, एक फूल के ऊपर जाकर वहां से थोड़ा अमृत लेते हैं, फिर दूसरे फूल, तीसरे फूल के ऊपर, ऐसे ब्रजवासी जो है ऐसा नहीं, ये बाबा जी जो हैं जो प्रामाणिक हैं, ऐसा नहीं कि एक घर में जाके पेट भर के भोजन करते हैं, थोड़ा लेंगे यहाँ से, फिर थोड़ा वहां से, थोड़ा वहां से, ऐसा करके करते हैं। तो वो कह रहे हैं, तो इसी तरह से ऋषि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ब्राह्मणों के घर में जाते थे, क्योंकि ब्राह्मणों के घर में शुचि, स्वच्छता, नियमों का पालन हुआ करता था। थोड़ा थोड़ा जो भी अल्प आहार जो भी वहां से मिलता था वो लेते थे और फिर भोजन करते थे। वो क्या खाते थे, रसमलाई, रसगुल्ला और फिर पुलाव, बिरयानी, ऐसा सब खाते थे? नहीं, शुष्क रोटी चना शिवाय भोग परिहारी, सूखी रोटी और चना ये उनका भोजन हुआ करता था, ऐसे रहा करते थे। और साथ में उनके उनका संसार क्या था, उनका सामान क्या था, उनके साथ बोरी बिस्तर क्या थी, उनके पास एक कमंडलू जल के लिए, साथ साथ में एक कंबल जो फटी हुई रहती थी जगह जगह, और वो हमेशा कृष्ण नाम का उच्चारण करते करते घूमते फिरते थे। उनकी लीला का, भगवान कृष्ण के लीला का आपस में परस्पर वो कथा करते रहते थे और कभी कभी हर्षित होकर वो नृत्य करते थे, कीर्तन करते करते। और ये लोग जो वृंदावन से लौट के आए वो कहते हैं ये दोनों गोस्वामी 24 घंटा भगवान का भजन करते हैं और वैसे 1.5 घंटा रात को सोते हैं, कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी भक्ति में और नाम जप में, कीर्तन में, कि वो भी कभी कभी वो भी नहीं करते हैं, 1.5 घंटा भी भजन नहीं करते, सोते नहीं हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं। हम कभी भूल जाते हैं सोने के लिए, खाने के लिए कभी भूल जाते हैं? नहीं। लेकिन रूप गोस्वामी वगैरह जो हैं, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी वृंदावन में ऐसे रहा करते थे। कभी कभी वो दिव्य ग्रंथों की रचना करते और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते और कभी कभी भगवान का स्मरण करते। इस प्रकार से इन भक्तों ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के क्रियाकलापों का वर्णन वृंदावन में जो थे उनका वर्णन किया सब जगह। और सारे भक्त सोचते हैं कि जिसने चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की है उसके लिए आश्चर्यजनक क्या है, उसके बारे में कुछ भी हम सुने तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये ऐसा वैराग्य, ऐसी तपस्या, ऐसा भजन अन्यथा कैसे संभव है? क्योंकि महाप्रभु की कृपा इनके ऊपर है इसलिए तो ऐसा सब कर सकते हैं, भजन, तपस्या इत्यादि। तो इसका मतलब है कि वृंदावन में रहते समय हमें भी समझना चाहिए कि हमें कैसे यहाँ पर खाना पीना, उठना बैठना, रहना चाहिए। यहाँ पर भी हमें गोस्वामियों की तरह रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी 1 घंटा रात को सोना चाहिए केवल, और हमें भी केवल रोटी और चना खाना चाहिए, ऐसा हम करेंगे तो हम मर ही जाएंगे। परंतु कहने की बात यह है कि बहुत सरल जीवन जीना चाहिए, यहाँ पर जितना हो सके सरल जीवन, सरल आहार, सरल भोजन, सिंपल लाइफ। यहाँ पे आकर भी हम जो शहर की सुविधाएं हैं वो भी हम प्राप्त करना चाहें, बड़े आराम से रहना चाहें, तो ये ठीक नहीं है। वृंदावन गोस्वामियों के लिए है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वृंदावन में आजकल इतना सब शानदार सब कुछ हो गया है, यहाँ तपस्या की भावना रही नहीं, अभी सरल जीवन की भावना रही नहीं, सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो सुविधाओं के बीच में रहते हुए जो प्रचार के लिए भगवान की सेवा के लिए सुविधा है उसको हमें स्वीकार अवश्य करना चाहिए, लेकिन अपने भोग के लिए नहीं। भगवान के लिए पूरा ऐश्वर्य हम भले क्यों ना दे दें, कृष्ण बलराम के लिए ऐसा शानदार मंदिर है, लेकिन हमारे लिए नहीं। तो हमें बहुत सरल जीवन रहना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, अपने आहार निद्रा इत्यादि को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए, तब हमें महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तपस्या के बिना, वैराग्य के बिना वृंदावन में रहना निष्फल है, बल्कि धाम अपराध हो जाएगा। तो खैर, जब यहां रूप गोस्वामी के बारे में ऐसे सुनते तो सारे भक्त बहुत प्रसन्न हो जाते, और इसलिए रूप गोस्वामी ने भी अपने भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ के मंगलाचरण में ये एक श्लोक कहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा किस तरह से इनके ऊपर आई है। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वरकारूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे चैतन्य देवस्य। हृदि, हृदय के अंदर, यस्य, जिन्होंने प्रेरणया, प्रेरणा दी, प्रवर्तितो अहम वराक रूपोपि। वराक मतलब एक बहुत तुच्छ और नीच। तो रूप गोस्वामी कहते हैं वराक रूप अपि, हालांकि मैं श्री रूप बहुत नीच हूं, बहुत तुच्छ हूं, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में इस भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, वो प्रेरणा दे दी है। किस तरह की प्रेरणा? जिससे कि मैं सतत भगवान की सेवा में लगा रहूं। तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। मुझे तो कोई ग्रंथ लिखने के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, नहीं आध्यात्मिक ज्ञान मेरे पास कुछ है, लेकिन मेरे हृदय में स्वयं चैतन्य देव ने प्रेरणा प्रदान कर दी है, शक्ति का संचार किया है, इसलिए मैं इस ग्रंथ को लिख पा रहा हूं। तो ये मंगलाचरण है। किसी ग्रंथ की शुरुआत करते समय जो लेखक होते हैं वो मंगलाचरण करते हैं ताकि सब कुछ शुभ हो अपने ग्रंथ में। किसी प्रवचन शुरुआत करते समय भी मंगलाचरण कहा जाता है, ओम ज्ञान तिमरामदसी इत्यादि। तो ये श्री रूप गोस्वामी का मंगलाचरण है, जिसमें वो अपना आभार व्यक्त करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में रहे 10 दिन, और जितने भी शक्ति थी, भक्ति की शक्ति, उन्होंने प्रदान की रूप गोस्वामी को। यहां तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि भक्ति करने के लिए और भक्ति में कोई विशेष कार्य करने के लिए भगवान की शक्ति की आवश्यकता है, जिसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। कृष्ण शक्ति बिना ना ही प्रवर्तन, कि जब तक कि कृष्ण शक्ति हमारे हृदय में नहीं आए भक्ति के द्वारा, तब तक हम कोई विशेष कार्य भक्ति में नहीं कर पाएंगे। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम ये नाम उपयांति ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त सतत श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए, और जो भक्ति भाव से भजन कर रहे होते हैं भगवान का, उनके हृदय में ही भगवान उनको मार्गदर्शन करते हैं। ददाम बुद्धि योगम तम ये नाम उपयांति ते, जिससे कि ये भक्त मुझे प्राप्त कर सके, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो भक्ति में भी अगर किसी को कोई ग्रंथ लिखने हैं, किसी को कोई विशेष सेवा करनी है, इसके लिए भी बुद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, योग्यता चाहिए। तो ये सब चीजें आएंगी कहाँ से? जब हम पूरी तरह से श्री कृष्ण के शरण में आ जाते हैं, कोई स्वार्थ नहीं रखते, भिन्न अतिरिक्त कोई अलग सा भाव या अलग उद्देश्य नहीं रखते हमारी सेवा में, हमारा उद्देश्य है केवल श्री कृष्ण को और वैष्णवों को प्रसन्न करना, तब भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में वो शक्ति का संचार करते हैं, हमें वो बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, सब अंदर से। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो भक्ति ये इसका क्षेत्र जो है इसका कोई भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का मामला है, भौतिक जगत का मामला नहीं है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा आरंभ हुई और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु को है शून रूप भक्ति रस लक्षण सूत्र रूपे को ही विस्तार ना जाए वर्णन। प्रभु को है, महाप्रभु कहने लगे शून रूप, अरे रूप सुनो, भक्ति रसेर लक्षण, मैं अभी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं भक्ति के रस के लक्षण, सूत्र रूपे को ही, लेकिन ये लक्षण जो है तुम्हें मैं सूत्र रूप में संक्षिप्त रूप में मैं कहने वाला हूं। क्यों ऐसे, विस्तार ना जाए वर्णन, क्योंकि वैसे भक्ति जो है इसका विस्तार करना संभव नहीं है क्योंकि इतना विशाल है, इसलिए केवल सूत्र रूप में मैं तुम्हें भक्ति रस के बारे में मैं जानकारी दूंगा। पारापार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु तो मय चखैते तारा कोई एक बिंदु। पार अपार, इसकी लंबाई और चौड़ाई किसकी, गभीर भक्ति रस सिंधु, भक्ति रस जो है इस भक्ति एक सागर के समान है, सिंधु मतलब सागर, भक्ति रस सिंधु। आगे चल के श्री रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के रस के अमृत का सिंधु सागर। सागर तो बहुत विशाल होता है, तो सोचिए हम, हमारा अनुभव तो केवल नमकीन पानी के सागर से है, है ना, समुद्र का पानी हम पी सकते हैं, नहीं, नमकीन होता है, तो कितना विशाल होता है सागर। अगर आप समुद्र के तट पर जाकर खड़े हुए हो कभी, आप देखते हैं कितना बड़ा सागर है ये, ऐसे लगता है कि अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसा ही सागर अगर अमृत का होता, और साधारण अमृत का नहीं जो कि देवलोक में पाया जाता है, ऐसे अमृत का पान करने से भी हमें लंबी आयु मिल सकती है लेकिन मृत्यु से हम नहीं बच सकते। लेकिन ये जो भक्ति के रस का अमृत है ये देवताओं के अमृत से भी श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि ऐसे अमृत को पाने से वास्तव में हम अमृत हो जाएंगे, मृत मतलब जो मृत्यु को प्राप्त होता है, अमृत मतलब जो अमर हो जाता है। तो भक्ति, भक्ति का अमृत जो है इसका सागर बहुत बड़ा है, विशाल है, और इसकी लंबाई चौड़ाई को नापतोल करना संभव नहीं है। इसलिए हे रूप तुम्हारे चाखाई थे ताहा तारक कहीं एक बिंदु, ये भक्ति का सागर बहुत बड़ा है लेकिन तुम्हें इसको चखाने के लिए एक बूंद में तुम्हें कह रहा, एक बूंद तुम चखो, मैं तुम्हें सुना रहा। तो जो भी शिक्षा अब रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु देने वाले हैं वो बहुत विशाल है, परंतु ये सारी शिक्षा भी भक्ति रस के सागर के का एक बूंद मात्र है। तो हम समझ सकते हैं कि ये विज्ञान कितना विराट है, कितना विशाल है। तो यहां से अब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा वास्तव में आरंभ होती है। और इस पहले भाग में चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे देने वाले हैं रूप गोस्वामी को। यहाँ इस भौतिक जगत के अंदर जितने भी बद्ध जीव हैं उनके स्थान के बारे में, उनका स्थान क्या है, पोजिशन ऑफ द कंडीशन लिविंग एंटिटीज, मतलब यहाँ इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों का स्थान। और इस विषय में सबसे पहला विषय है जिसका वर्णन महाप्रभु करने जा रहे हैं, ए तो ब्रह्मांड भोरी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनि ते करो ए भ्रमण, कि इस ब्रह्मांड के भीतर अनंत जीव गण हैं और ये 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो 84 लाख योनि केवल पृथ्वी लोक पर नहीं है, सारे ब्रह्मांड भर में चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं केवल पृथ्वी लोक की बात नहीं कर रहे हैं, ये 84 लाख योनियां सारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं और भ्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब जीव इस शरीर को किसी योनि को त्याग करता है तो किसी अन्य योनि में या अन्य शरीर में पुनः जन्म लेता है। यह तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बतला रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि प्राणी केवल पृथ्वीलोक पर है। जैसे यहां पृथ्वीलोक पर हम देखते हैं कि तरह तरह के वातावरण में अलग अलग प्राणी रहते हैं, उनके शरीर और रूप इत्यादि अलग अलग रहते हैं। जैसे कि समुद्र में तैरने वाले मछलियों का रूप एक है, हवा में उड़ने वाले पक्षियों का रूप अलग है, और जमीन के ऊपर चलने वाले पशु और मनुष्य इनका रूप अलग है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे भी सारे ब्रह्मांड में कई वातावरण है, अलग अलग ग्रहों में, लोकों में, जहां वातावरण कहीं अग्नि का है जैसे सूर्य देव लोक में, कहां पर जल का प्राधान्य है, कहां पर आकाश का प्राधान्य है। इन जितने भी तत्व हैं जिनसे कि ब्रह्मांड बना हुआ है, जो स्थूल तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में अलग अलग तत्वों का प्राधान्य है। यहां पर पृथ्वी लोक में 70% जल है, बराबर है ना, आपने स्कूल में पढ़ा होगा विज्ञान में। हमारे हमारे शरीर के अंदर भी 70% जल है, जल का प्राधान्य यहां पर है, लेकिन फिर भी पृथ्वी भी है और आकाश भी है, अग्नि भी है। लेकिन सूर्यलोक, सूर्यलोक में तो अग्नि का प्राधान्य है। तो क्या इसका मतलब है कि सूर्यलोक में कोई रहते नहीं है, कोई प्राणी नहीं है? अगर हमारी सीमित भौतिक बुद्धि से, हमारे पृथ्वी लोक के अनुभव से हम सोचें तो हम कहेंगे कि ये संभव नहीं है। हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, सूर्य लोक में कैसे कोई जी सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई आग हो जाती है तो हमारा शरीर जल के भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, तो भले वहाँ पर कोई रहे कैसे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या आप इस शरीर को लेकर पानी के नीचे रह सकते हैं? नहीं। क्या इस मनुष्य शरीर को लेकर आप आसमान में पंखी की तरह उड़ सकते हैं? नहीं। अलग अलग वातावरणों के लिए अलग अलग शरीर चाहिए। तो वहां पर सूर्य लोक में अग्नि का प्राधान्य है, तो वहां पर लोगों को अग्नि का शरीर प्राप्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमि आपन वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। कि ये प्रकृति 8 प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है, जिसमें से सबसे स्थूल है पृथ्वी, सॉलिड्स, ये सब पृथ्वी है, पृथ्वी का रूप है। इतने में सब कठिन वस्तु होते हैं, सॉलिड, ये पृथ्वी है। फिर जितने भी तरल वस्तु होते हैं वो पानी के स्वरूप हैं, जल के स्वरूप हैं। और फिर जितने उष्णता है सब जगह, अभी हम उष्णता का अनुभव कर रहे हैं, सूरज की रोशनी, सूरज की उष्णता है। फिर अग्नि है, ये सब अग्नि के स्वरूप है। हमारे हृदय में भी, हमारे पेट में भी अग्नि है, जठर अग्नि इसको कहते हैं। जठर अग्नि अगर नहीं हो तो किसी भोजन का पचन हम नहीं करा पाएंगे। जब हम पचन नहीं कर सकते, पचन शक्ति कम हो जाती है, तो हमारे पेट के अंदर जो अग्नि है उसको बढ़ाने के लिए वैद्य जो है कोई दवाई देते हैं, ताकि गर्माहट हो जाए पेट के अंदर। ऐसे कहा जाता है कि भीमसेन के अंदर, पेट के अंदर ये जो जठर अग्नि है इतनी तीव्र थी, प्रज्वलित रूप से जल रही थी, उनका नाम ही वृकोदर हो गया। इनके उदर में ये अग्नि बहुत अच्छी तरह से जल रही हो, तो अग्नि भी है। तो सूर्य लोक में रहने के लिए अग्नि का शरीर चाहिए, और ऐसे निवासी है भी। अगर हम सोचेंगे कि ऐसा शरीर सूर्य लोक में रहेगा तो ये कैसे संभव है? तो सूर्य लोक में भी लोग हैं, चंद्र लोक में भी हैं, हर एक लोक में, यहां पर ग्रह में प्राणी रहते हैं, लेकिन हर एक लोक में अलग अलग उनके शरीर होते हैं। भगवत गीता में भी जब श्री कृष्ण कहते हैं, जीव का वर्णन करते हैं आत्मा का, तो सर्वगत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि आत्मा सब जगह है। इसका मतलब ये नहीं कि एक आत्मा सर्वव्यापी है, नहीं, एक आत्मा तो एक ही स्थान पर है, परंतु अनगिनत ऐसे आत्माएं फैले हुए हैं। देखिए यहां पर इस कमरे के अंदर कितने आत्माएं हैं, कोई बता सकते हैं? यहाँ आत्माओं की संख्या क्या है बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20 बराबर नहीं, कितने अनगिनत इस छोटे से कमरे में, कैसे क्या क्या हमें दिखाई नहीं देते हैं? और हमारे शरीर में कितने कीटाणु हैं, है ना, जर्म्स बैक्टीरिया कितने सारे लाखों 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 हैं, और यहाँ हवा में इतने से हवा में अब यहाँ पर कितने लाखों कीटाणु हैं, और ये मच्छर मक्खी इनकी बात तो दूर है। तो इस छोटे से कमरे में अनगिनत जीव हैं, इतने छोटे से कमरे में। तो फिर सारे पृथ्वी की बात क्या, सारे ब्रह्मांड की बात क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात क्या। तो इसका मतलब है कि जीवों के रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन सारे ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों को भ्रमण करना पड़ता है। इसी बात को मूल रूप से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं। 84 लाख योनियों के बारे में भी पुराणों में वर्णन आता है, तरह तरह की योनियाँ हैं, जलजान अवलक्षाणी मतलब जल में चलने वाले 9 लाख योनियाँ हैं, स्थावरा लक्ष विंशति मतलब जो पेड़ पौधे हैं 20 लाख हैं, क्रमयो रुद्र संख्यकाः कि जो कीड़े वगैरह हैं वो 11 लाख हैं, पक्षिणाम दशलक्षणम पक्षियों की संख्या जो है योनियों की संख्या, पक्षियों की नहीं पक्षियों की योनियों की संख्या 10 लाख है, 33 लक्षाणि पशवः कि पशुओं की योनियों की संख्या 30 लाख है, 4 लक्षाणि मानुषाः और मनुष्य योनि 4 लाख तरह के होते हैं, तरह तरह के मनुष्य भी होते हैं, ऐसे नहीं कि मनुष्य योनि केवल एक है, ये पद्म पुराण में वर्णित है। इसका मतलब है कि शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है, जो आधुनिक वैज्ञानिक जिस ज्ञान को समझ रहे हैं वो उनमें काफी भेद है। फिर आगे दूसरा विषय चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को दे रहे हैं और वो है कि आत्मा कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। इस एक छोटे से विषय की चर्चा करके आज का आज की कथा हम समाप्त करेंगे और आगे बहुत सुंदर बातें हैं जो महाप्रभु सुनाने वाले हैं। और वो बताते हैं कि आत्मा कितना बड़ा है, आइए देखते हैं दूसरे श्लोक में। प्रचार के लिए ये सारे श्लोक बहुत लाभदायक हैं, अगर इन श्लोकों को आप कंठस्थ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें न केवल अपने लिए समझना है इस ज्ञान को, लेकिन आगे चल के हमें प्रचार भी करना है, अन्यों को भी समझाना है, सुनाना है। केशाग्रशतभागस्य शतांश सदृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चिक्कणः। केश अग्र, अगर आपने एक केश का एक बाल का अग्र रूप स्वीकार किया और इस एक बाल के अग्र रूप को शतभागस्य, शत मतलब 100 भागों में काट दिया, संभव है ये नहीं संभव है ना, बाल के अग्र भाग को 100 टुकड़े कर सकते हैं, बहुत कठिन, लेकिन फिर भी कल्पना कीजिए कि ऐसे किया जा सकता है। तो ऐसे केश के अग्र भाग के 100 टुकड़े कीजिए और ऐसा एक टुकड़ा लीजिए, फिर भी शतांश सदृशात्मक है, और इस एक टुकड़े के और 100 टुकड़े कर दीजिए, सदृश मतलब समान से, तो वो अब जो टुकड़ा होगा सदृश आत्मा का है, वो आत्मा का साइज है, आत्मा इतना छोटा है। तो कल्पना कीजिए, तो कई लोगों को जब घमंड हो जाता है तो उनको याद दिलाना चाहिए, अब कोई सोचता है मैं इतना बड़ा राजा हूं, इतना बड़ा मंत्री हूं, इतना बड़ा ये हूं वो हूं, तो आप कौन है, आप केवल एक केश के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से हैं, टुकड़े हैं, आप इतने ही हैं, आप आत्मा हैं, आपका परिचय ये है, आप कोई बड़े राजा बड़े मंत्री नहीं है, ये तो थोड़े दिन के लिए आपका शरीर रहेगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। आपकी असली पहचान यही है, जीव सूक्ष्म स्वरूपो यम। तो ऐसे ये जीव का सूक्ष्म स्वरूप है, संख्या अतीत। संख्या क्या है इन जीवों की, इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर? अनगिनत, अतीत। और ये हर एक आत्मा जो है, ये सूक्ष्म आत्मा क्या है? चित कण है, एक कण है। लेकिन किसका कण है? चित, चिन्मय शक्ति का कण है, भौतिक शक्ति का नहीं। इन ये अष्टधा प्रकृति जो है, जिसका वर्णन हम कर रहे थे पहले, ये भौतिक, ये आत्मा जो है अष्टधा प्रकृति के से कोई संबंध नहीं रखता। ये चिन्मय शक्ति का एक कण है, इसलिए यहां चित कण है। चित शक्ति का एक कण मात्र है, ये बहुत छोटा है। और इस प्रकार से और भी एक दो श्लोक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अलग अलग ग्रंथों से। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, सूक्ष्माणाम अपि अहम जीवः। सूक्ष्म वस्तुओं में से सबसे सूक्ष्म वस्तु जीव मैं हूं। जीव भी तो भगवान के अंश हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जीव को ही भगवान मानते हैं। ये मायावादी कहलाते हैं, अद्वैतवादी, जो सोचते हैं कि जीव भी भगवान ही है। परंतु यहां पर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के एक श्लोक में से चैतन्य महाप्रभु प्रमाण रख के कहते हैं कि नहीं, चार कुमार इस श्लोक को कह रहे हैं कि अगर वास्तव में जीव एक जीव सर्वव्यापी होता तो वह परम हो जाता, उसके ऊपर कोई नियंत्रण करता होने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन अगर हम ये स्वीकार करें कि जीव कण मात्र है, चित कण है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि वह भगवान श्री हरि के नियंत्रण में हमेशा रहता है। और जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझ लेता है कि मैं भगवान का अंश मात्र हूं और उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा स्वरूप है, तो फिर वो हमेशा अपने मुक्त अवस्था में रहेगा और सच्चे सुख को प्राप्त कर पाएगा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा इस तत्व से आरंभ की, जीव तत्व से। क्योंकि भक्ति तत्व समझने के पहले, कृष्ण तत्व समझने के पहले हमें जानना चाहिए कि हम कौन हैं। क्योंकि कृष्ण की भक्ति करनी है ना, तो कृष्ण की भक्ति कौन करेगा? तो भक्ति जो कर रहा है वो कौन है? वो आत्मा है। भक्ति तो आत्मा और श्री कृष्ण के बीच में संबंध है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है, जानना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक ज्ञान के सबसे प्राथमिक, प्राइमरी स्तर से शुरू किया है, आत्मा और शरीर, आत्मा की पहचान। और आगे चल के महाप्रभु वर्णन करने वाले हैं इसी विषय में कि इस भौतिक जगत में जीवों के अलग अलग जो विभाजन है वो कैसे किए जा सकते हैं, और इसका विश्लेषण करेंगे रूप चैतन्य महाप्रभु कि तरह तरह के प्राणी हैं, और करते 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 वो इस स्तर तक पहुंचेंगे कि सबसे श्रेष्ठ यहाँ प्राणी कौन है, जीव यहाँ इस भौतिक जगत में कौन है। बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने विश्लेषण किया है, तो इसको एक चार्ट के रूप में हम कल चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्रमशः हम जाएंगे शनै शनै। महाप्रभु ने बड़े लॉजिकल ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से इसका विश्लेषण करते हुए समझाया, तो इसको हम कल देखेंगे क्योंकि अब 1:30 बज गया। तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी,
जैसे रूप गोस्वामी का नाम पहले से तो रूप गोस्वामी नहीं था,
हाँ,
तो चैतन्य महाप्रभु तो उनको रूप के नाम से संबोधित करते हैं, तो ऐसे कोई विशेष घटना हुई कि जब से चैतन्य महाप्रभु रूप के नाम से पुकारने लगे?
जब रामकेली में आए तो उनको ये नाम दिए, तुम्हारा नाम श्री रूप होगा, तुम्हारा नाम श्री सनातन होगा। पहले सनातन गोस्वामी का नाम था साकर मल्लिक और रूप गोस्वामी का नाम था दबीर खास। क्यों रूप गोस्वामी को ऐसा नाम दिया श्री रूप, किसी को पता है? रूप मंजरी, क्योंकि गोलोक, वैसे रूप गोस्वामी सनातन, सारे षड गोस्वामी जो है ये श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है, नित्य सिद्ध जीव है ये। जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, तो अपने नित्य सिद्ध पार्षदों को साथ में लेकर आते हैं। जैसे जब भी कोई मंत्री या राजा कहीं घूमने जाता है तो अपने सेक्रेटरी असिस्टेंट वगैरह सहायकों को लेकर जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपने साथियों को भक्तों को लेकर आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए तो अपने भक्तों को भी लेकर आए गोलोक वृंदावन से, और रूप मंजरी ये गोपियों की सेविका है वो रूप गोस्वामी के रूप में है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए उन्होंने उनको नाम श्री रूप दिया।
ये कार्मा के बारे में
जी,
आपने आत्मा का एक साइज एक माप बतलाया 1/10,000 के अप्रोच में है, मगर आत्मा तो चिन्मय है, और जब चिन्मय है तो चिन्मय कोई कोई माप नहीं होता, तो ये माप क्यों?
नहीं, ऐसा नहीं है कि चिन्मय का माप नहीं होता, हो सकता है, परंतु चिन्मय के माप में और किसी भौतिक चीज के माप में अंतर होता है। कि चिन्मय का माप बदल सकता है इच्छा के अनुसार, जैसे गोलोक वृंदावन या जो वैकुंठ जगत है, चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं अन्य जगह चैतन्य चरितामृत में कि ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, इसको नाप तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक जगत है सारे सृष्टि का 3/4 भाग है। तो अगर किसी चीज को हम नाप तोल नहीं कर सकते, माप नहीं कर सकते, तो फिर 3/4 हिस्सा कहने का सवाल ही कहाँ आता है, सही है ना? तो एक कहने के लिए, हमारे समझ के लिए कि भौतिक जगत जो है, ये भौतिक सृष्टि, सारे सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का 1/4 हिस्सा है और आध्यात्मिक जगत 3/4 हिस्सा है। आध्यात्मिक जगत के आकाश के किसी एक कोने में एक बादल जैसा ये सारे भौतिक सृष्टि स्थित है। तो उसी प्रकार से यहां पर भौतिक जगत के अंदर जो भी आत्माएं हैं उनका भी माप है, एक एक हिंट है, ये एक सूत्र है केवल हमें हिंट देने के लिए कि आत्मा कितना छोटा है। लेकिन जब स्वरूप का स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी तब आत्मा इतना ही नहीं रहने वाला है, आत्मा का स्वरूप बदल जाएगा। जब गोलोक वृंदावन में जाएगा तो कोई गोपी हो जाएंगे, कोई गोप हो जाएंगे, कोई गाय, कोई वृक्ष, कोई क्या, तो उस हिसाब से उनको अलग अलग आध्यात्मिक चिन्मय शरीर मिल जाएंगे। तरह तरह के चेतना के अनुसार स्तर होते हैं ना, तरह तरह की चेतना है। तो चेतना जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कितने अलग अलग लोग हैं, उनकी चेतना के स्तर देखिए। कोई है पशुतुल्य है, बिल्कुल पशु के समान उसका उसके विचार है, और कोई है बिल्कुल साधु संत के तरह उनके विचार है। फर्क है ना चेतना में। आप देखिए दुनिया में लोगों के अंदर कितने अंतर दिखाई पड़ते हैं उनकी चेतना में। तो चेतना के हिसाब से योनियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। धन्यवाद। केवल 5-7 मिनट आज लेट हैं हम बंद करने में, क्योंकि कल ठीक 12 बजे शुरू करेंगे। उसके पहले हो सके तो हम कोशिश करें 15 मिनट आपको ब्रेक मिले, ताकि आप पिछले लेक्चर से फ्रेश होकर 15 मिनट फिर से आए, नहीं तो 9:45 से सीधे 1:30 बजे तक आपके लिए भारी हो सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।